तो आज आप ये जानना चाहते हैं कि सतनाम क्या है और ये कैसे ये प्राप्त होता है। सतनाम का मतलब होता है शब्द ब्रह्म। जिसके बारे में बाइबल में भी लिखा है, इन द बिगिनिंग वाज वर्ड, प्रारंभ में केवल शब्द था। वर्ड वाज विद गॉड, शब्द ईश्वर के साथ था। वर्ड वाज गॉड, शब्द ही ईश्वर था। इसका मतलब वो जो चेतन सत्ता है जिसको हम ब्रह्म कहते हैं, उसी को ही शब्द ब्रह्म भी कहते हैं। इसीलिए सृष्टि रचना से पहले संसार में, ब्रह्मांड में कुछ भी नहीं था, केवल वो शब्द ब्रह्म ही था, सतनाम ही था। लेकिन हम द्वैत सृष्टि में रहते हैं, तो द्वैत सृष्टि में हमको मार्गदर्शन चाहिए, क्योंकि द्वैत सृष्टि में हम और सुख और दुख के बंधन में है, कर्तापन के बंधन में है, वासना के बंधन में है। इससे हमको मुक्ति चाहिए, इसलिए गुरु हमसे कहता है तुम ईश्वर परायण जीवन व्यतीत करो, ईश्वर निश्चय मन में धारण करो और उस ईश्वर को जानने की कोशिश करो। तो इसीलिए वो ईश्वर क्या है वही बाइबल डिफाइन कर रही है, वर्ड वाज विद गॉड, ईश्वर के साथ शब्द ही था। फिर भी किसी को यदि कंफ्यूजन हो तो फिर आगे एक्सप्लेन कर रहा है सतपुरुष कि वर्ड वाज गॉड, शब्द ही ईश्वर था। इसका मतलब ईश्वर क्या है उसी का मैनिफेस्टेशन है, गुरु क्या है उसी शब्द का, सतनाम का मैनिफेस्टेशन है। तो इसीलिए हमको ये जानना चाहिए और ये निश्चय करना चाहिए कि गुरु खुद शब्द ब्रह्म है और गुरु की स्थिति अवतारों से भी ऊंची होती है, जिसको वाणी डिफाइन कर रही है, राम कृष्ण और गुणी बहु सब संतन के शीश। राम और कृष्ण जैसे अवतार भी जो सारे विश्व में फेमस हैं, वो भी संतों के शिष्य हुए हैं। ऊंची घाट है साध की, आलख पुरख का भेष। जो साधु है, जो सतपुरुष है, जो सतगुरु है, वो उसकी अवतारों से भी ऊंची स्थिति है, वो तो सीधा सीधा आलख पुरख अर्थात शब्द ब्रह्म का, शब्द ब्रह्म ही भेष धारण करके आपके सामने आया है। तो इसीलिए उस शब्द ब्रह्म को प्राप्त करना, उस तक पहुंचना, ये जीव का लक्ष्य है, क्योंकि उससे कम में जीव को शांति नहीं मिल सकती। जिसको परम शांति कहते हैं वो वहीं जाकर उसको प्राप्त होती है। तो वो परम शांति हमें कैसे प्राप्त हो, इसके बारे में ईश्वर ही कोई रचना कर सकता है। इसलिए वो गुरु के रूप में संसार में आता है और उस शब्द ब्रह्म तक हम पहुंचे कैसे, उस शब्द को प्राप्त कैसे करें, या यूं कहें उस ईश्वर को प्राप्त कैसे करें, उसके लिए वो सद्गुरु नाम रूप में अवतार लेकर शिष्य के अंदर प्रवेश करता है। तो इसीलिए गुरु जब किसी को दीक्षा देता है या नाम देता है तो वो नाम नहीं है, लोगों के हिसाब से वो नाम हो सकता है, लेकिन गुरु की दृष्टि में वो नाम नहीं है, वो नाम रूप में ईश्वर का अवतार है जो शिष्य के अंदर प्रवेश गुरु के द्वारा कर चुका है। ऐसे नाम को गुरु से प्राप्त कर यदि कोई पूर्ण श्रद्धा युक्त होकर पूर्ण प्रेम से उसके बताए हुए मेथड से जाप करे तो वो जो नाम है जो ईश्वर का अवतार है वो खुद नाद रूप है, वो प्योर नाद के अलावा कुछ भी नहीं है, और जिस गुरु ने दिया है वो भी प्योर नाद रूप है, वो भी मनुष्य नहीं है। दीक्षा लेने वाला इसको यदि मनुष्य समझ ले तो गलती कर बैठेगा, फिर वो नाम को नाम ही समझ लेगा कि मेथड मुझे मालूम है, टेक्निक मुझे मालूम है, मैं किसी को भी दे सकता हूं या किसी से भी ले सकता हूं। तो महाजी ने समतावास में लिखा ये तो केवल व्यापार है, एक परंपरा है, लोग निभाते हैं, इससे प्राप्त कुछ भी नहीं होता। तो इसीलिए कभी इस लोक में ऐसा वक्त भी आता है कि जीवों का इतना पतन हो चुका होता है कि पूर्ण गुरु की प्राप्ति के लिए वो पात्र ही नहीं रहते। ये तो ईश्वर ही जानता है कि लोक किस अवस्था में है, इसीलिए ऐसी हालत में वो सिद्ध मंत्रों का भी प्रकटीकरण कर देता है। जैसे महाराज जी के द्वारा महामंत्र प्रकट हुआ, त्रयोदश अक्षर मंत्र ये सर्व सिद्धि दातार, जो सिमरे नित प्रेम से मंगल पाया पार। वहां कंडीशन ही लिखी हुई है कि जो इसका प्रेम से सिमरन करेगा, और याद रखिए प्रेम हमेशा लाइव वस्तु से होता है, जड़ वस्तु से प्रेम नहीं होता। जड़ वस्तु को लाइक किया जाता है, डिसलाइक किया जाता है, पसंद किया जाता है, नापसंद किया जाता है, लेकिन जीवित वस्तु से प्रेम किया जाता है। हम कुत्ते से प्रेम कर सकते हैं, बिल्ली से प्रेम कर सकते हैं, मनुष्य से प्रेम कर सकते हैं। तो जो सिमरे नित प्रेम से, ये ईश्वर की अवतरित फॉर्म है, ईश्वर का अवतार है, वो चेतन शक्ति है, मंत्र नहीं है, वो चेतन शक्ति है। जिसने उसको गुरु मंत्र करके जाना है उसी व्यक्ति का ये मंत्र कल्याण करेगा, क्योंकि संशय के साथ जो जप करेगा संशय उसके मन को कभी भी शांत नहीं होने देगा। एक बात सोचेगा संशय की, उससे दो पैदा होंगी, दो सोचेगा तो चार पैदा होंगी, मन के अंदर संशय का शोर बना रहेगा, संकल्पों का शोर बना रहेगा, उसके संकल्प कभी शांत नहीं होंगे। इसलिए समर्पण, श्रद्धा और विश्वास ये पहली कंडीशन है मंत्र जाप से, मंत्र जाप करने वाले के लिए। इसलिए मंत्र विज्ञान समझना चाहिए, यदि श्रद्धा नहीं है तो जाप करके क्या करोगे आप? गुरु मंत्र पर भी श्रद्धा नहीं है, गुरु ने सीधा भी मंत्र दे दिया तब भी श्रद्धा नहीं है, तब भी उसका जाप करके क्या करोगे आप? महाराज जी के एक शिष्य मुझे मिले थे, ऐसा मत समझिए कि पूर्ण गुरु से दिशा लेके सब विश्वास भी आ जाता है, सब कुछ आ जाता है, ऐसा नहीं होता। सफलता भी उन्हीं को मिला करती है जिनके अंदर विश्वास होता है और जो पूर्ण श्रद्धा प्रेम से जाप करते हैं। महाराज जी के एक शिष्य, मैं नाम तो नहीं लूंगा, बरेली में मेरी उनसे भेंट हुई, उन्होंने महाराज जी से दिशा ली थी। मैं जब दिल्ली से बरेली पहुंचा 79 में, तो मैंने भी वहां आश्रम जाना शुरू किया, तो कुछ दिनों में उनसे जान पहचान हो गई। तो मेरी बात ये सुनने के बाद उनके अंदर कुछ विचार आया, चलो इनसे राय लेते हैं, वो मुझे अपने घर ले गए। घर लेकर मुझसे बोले, घर ले जाकर, मैं आर्य समाजी हूं और ओम का जाप करता हूं, लेकिन महाराज जी ने मुझे नाम दिया है, बरेली में दीक्षित हुए थे वो, मेरा मन उसमें लगता नहीं, मेरा मन ओम में लगता है। तो मैंने कहा देखिए ऐसा है कि ओम नाम बुरा नहीं है, वेदों में उसका विवरण आता है, लेकिन मैंने कि गुरु ने जो नाम दिया है उसमें और ओम में जमीन आसमान का अंतर है। गुरु का नाम खुद गुरु है, ओम राम कृष्ण नाम बड़े अच्छे हैं, ओम नमः शिवाय सब अच्छे हैं, कुछ ना कुछ कल्याण ये जीव का करते हैं, कम से कम मन की शुद्धि करते हैं, मन के अंदर सत्वगुणी भाव आते हैं, कुछ ना कुछ तो शुद्धिकरण होता है। लेकिन जब बात ईश्वर प्राप्ति की आती है, ईश्वर से भेंट की आती है, ईश्वर को जानने की आती है, तब गुरु की बात माननी ही पड़ती है, क्योंकि जिस ईश्वर से भेंट कर रहे हो वही ईश्वर आपको नाम दे रहा है। जिस ईश्वर से भेंट करने जा रहे हो आप वही ईश्वर आपको नाम दे रहा है, कह रहा है मुझसे भेंट करनी है तो इस रास्ते से आ। तो बाद में एक साल बाद फिर मुझे बुलाया उन्होंने, फिर वही संशय प्रकट किया उन्होंने। तो मैंने देखा कि उनकी संशय वृत्ति कभी भी निवृत्त नहीं, पूर्ण गुरु से नाम मिलने के बाद भी उनके अंदर संशय वृत्ति निवृत्त नहीं हुई। तो ये मन की ऐसी हालत होती है। यहां आके स्वाध्याय बहुत काम आता है। यदि आपने शास्त्रों का गहरा अध्ययन किया है, विश्लेषण किया है, कहीं आप अटके हुए हैं तो आपको अंदर ये फेथ आ जाता है, अरे सारे शास्त्र इस विज्ञान को कंफर्म कर रहे हैं जो गुरु कह रहा है, बात गुरु कोई अनोखी बात नहीं कह रहा है, नई बात नहीं कह रहा है, ये वेदोक्त बात है, प्राचीन काल से चली आई। तब उसके अंदर निश्चय आता है कि गुरु ने ठीक कहा है। नहीं तो अपनी बुद्धि के बल पर जो सुनी सुनाई बुद्धि हमारी पल जाती है उसमें तो हम या तो गुरु फेथ आ जाए, गुरु के आगे समर्पण हो जाए, लेकिन ऐसा बहुत कम होता है। तो इसीलिए कोई कोई शिष्य ऐसा होता है जो गुरु की बात पर ठीक ठीक भरोसा करके अपना समर्पण करके तप में लग जाता है। तो विश्वास भी पूरा हो, गुरु भी पूरा हो, और तेरी कोशिश भी गुरु के अनुसार पूरी हो, तब रंग लगेगा ही लगेगा, कोई रोक नहीं सकता। लेकिन ऐसा कम ही होता है, या तो निश्चय पूरा नहीं होता, या गुरु पूरा नहीं होता, या हमारी कोशिश पूरी नहीं होती जैसा गुरु ने मार्गदर्शन किया, तो इसलिए हम पिछड़ जाते हैं। तो इस देह के अंदर नाद रूप परमेश्वर अंगूठे से लेकर चोटी के स्थान तक रोम रोम में व्याप्त है। वो महाजी कहते प्रेमी हड्डी में, नाड़ी में, और इसके बाद ये जब ये शरीर की बाउंड्री क्रॉस करता है तो पत्थरों में, नदियों में, हर जगह ये नाद आपको अनुभव होगा। उस समय निश्चय होता है इस भक्त का कि सारी सृष्टि नाद रूप है। तो वाणी भी कह रही है कि रोम रोम में रमत स्वामी, राम नाम भज अंतरयामी। वो दशरथ पुत्र राम की बात नहीं कर रही है वाणी, रोम रोम में जो नाद रमा हुआ है उस राम की बात कर रही है। तो इसलिए ये सतनाम है, सतनाम वाहे गुरु इसलिए कहा जाता है, यही गुरु है। ये मुंह से उच्चारण करने वाला सतनाम नहीं है, मन को रमाने वाला सतनाम है कि मौन होकर मन इसमें रम जाए। तो इसीलिए जिस ईश्वर ने गुरु बनकर अवतार बनकर संसार में पदार्पण किया है, उस गुरु की बात यदि पढ़ेंगे या सुनेंगे और गहरे मनन के बाद उसके निश्चय पर पहुंचेंगे कि जो कह रहा है वो मैं ठीक समझ रहा हूं और मेरा विश्वास उस पर पूरा बना हुआ है, तो ठीक समझ के साथ, ठीक निश्चय के साथ जब ठीक चीज गुरु की आप अपनाएंगे तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपको उस सतनाम का अंदर अनुभव ना हो ही नहीं सकता। तो इसीलिए इस देह के अंदर वो प्रकट होता है, उसका अनुभव। महाजी की वाणी कह रही है कि नाभ कंवल है अचरज थाना, जामे वसया श्री भगवाना। नाभि कंवल जो है, ये मणिपुर चक्र जो है, ये अचरज स्थान है मनुष्य की देह में। यहां श्री भगवान का निवास है। इसका मतलब कोई एक प्लेस नहीं है जहां निवास है। यहीं कंट्राडिक्शन, विरोधाभास पैदा हो जाता है कि एक तरफ तो कहते हैं रोम रोम में व्याप्त है, एक कर्म कहते हैं, एक तरफ कहते हैं कि नाभि में स्थित है। तो ये हमारे वास्ते बात कही जा रही है कि हम जब साधना करेंगे तो हमको कहां अनुभव होगा, ये तो वो पहला अनुभव उसका नाभि में ही होगा। वो प्राण, हमारी देह में जो प्राण चल रहे हैं इसलिए उसको प्राणनाथ कहा जाता है। ये प्राण का दाता वही नाम है, वही सतनाम है, वहीं से ये प्राण उदय होता है। तो इसलिए वाणी कह रही है कि नाभ कमल है अचरज थाना, जामे वसया श्री भगवाना। जहां से उपजे श्वास का थंबा, जहां से श्वास उत्पन्न होती है। डॉक्टर से पूछोगे कहेगा फेफड़े से सांस श्वास उत्पन्न होती है, लेकिन जिनकी क्लिनिकल डेथ हो जाती है उनकी श्वास वापस कैसे आ जाती है, फिर कहां सुरक्षित रहती है उनकी श्वास। हृदय की गति रुक जाती है फिर भी प्राण वापस आते हैं। योग विज्ञान कहता है कि श्वास रुकने से मनुष्य की फाइनल डेथ नहीं होती, वो अग्नि में प्रवेश कर जाती है। वो अग्नि क्या है इस देह के अंदर, जिस प्रकार नाद है उसी प्रकार वही चेतन सत्ता कुंडलनी रूप में भी इस देह में निवास करती है। तो किसी को वो नाद रूप में अनुभव होती है, किसी को वो निरत रूप में अनुभव होती है या कुंडलनी रूप में अनुभव होती है। इसलिए सुरत निरत की बात वाणी में आया, कई जगह आया करती है। तो ये श्वास भगवान से ही पैदा होती है, चाहे हम उसको नाद कह लें, नाद से पैदा होती है, या यूं कह लें कुंडलनी से पैदा होती है, उसी में लीन होती है। तो बताइए ये सारी चीज मेरे अंदर मौजूद है, भगवान का वो रूप जो मेरे अनुभव में आ सकता है। देखिए ये नाद, ये कुंडलनी भी जहां से उत्पन्न हुई है वहां लीन होती है। जहां से उत्पन्न हुई है उसका नाम है ब्रह्म, जहां लीन होती है उसका भी नाम है ब्रह्म। तो इसीलिए बिना इनकी मदद के मुझको ब्रह्म स्थिति प्राप्त नहीं हो सकती, मोक्ष प्राप्त नहीं हो सकता, आत्मलीनता ही प्राप्त नहीं हो सकती। मेरा व्यक्तित्व, मेरी इंडिविजुअलिटी, मेरा कर्तापन बना रहेगा। इसीलिए जो नाम है, जो मंत्र है, जब मैं इसको गुरु करके जाप करता हूं कि ये गुरु है, मैं गुरु का संग कर रहा हूं। इसलिए महर्षि रमण ने कहा कि मंत्र, गुरु, कुंडलनी, आत्मा एक ही चीज है। मंत्र, गुरु, कुंडलनी, आत्मा एक ही चीज है, अर्थात एक ही चीज के चार ट्रांसफॉर्मेशंस हैं, एक ही चीज के चार रूप हैं। चारों चीजें बिल्कुल प्योर हैं। इसलिए भूल कभी कोई ये ना समझे महामंत्र एक मंत्र है। महामंत्र लाइव गुरु है, ऐसा लाइव गुरु है जो ब्रह्म तक आपको पहुंचाकर ही छोड़ेगा, लेकिन संशय वृत्ति आदमी को कहीं का नहीं छोड़ती। ऐसी बहुमूल्य चीज जो मनुष्य जन्म में सबसे कीमती वस्तु है, तेरे पास 10 अरब की भी संपत्ति है, उसके आगे कूड़ा है। ऐसी अमूल्य धन हमको प्राप्त हुआ है, लेकिन संशय वृत्ति लेकर, संसारियों की बुद्धि के चक्कर में फंसकर मैं गुरु की बात को मिथ्या समझ लेता हूं, उस पर संशय खड़ा कर लेता हूं और मैं कहीं का नहीं रहता। तो इसीलिए ये मनुष्य की बहुत बड़ी भूल है, बहुत बड़ी अज्ञानता है कि गुरु की बात को भी, लिखित बात को भी वो संशय दृष्टि से देखे। अरे वाणी तो अगम वाणी है, वाणी में खुद आया है कि वाणी ये अगम की नित आलख पुरख का लेख, उस आलख पुरख का लेख है भैया, उस पर तू संशय कर रहा है, तेरी बुद्धि मारी गई है क्या, किसकी स्टैंप लगाना चाहता है कि ये बात ठीक है। अरे वाणी, उसको वाणी प्रकट हुई है महामंत्र के साथ, तू उस पर संशय कैसे कर सकता है। दुनिया का कोई मनुष्य इसके लिए अथॉरिटी नहीं है। जो संशय करेगा वो पाप की गर्त में जाएगा, कोई रोक नहीं सकता उसको, वो संसार में डूबना ही डूबना है। यदि विश्वास नहीं है तो चुप रहो, बस बात खत्म हो गई। तुम संशय प्रगत क्यों करते हो? हां, यदि आपके अंदर जिज्ञासा है, ईश्वर को प्राप्त करने की तड़प है, उसके लिए खोज करना चाहते हो, वो संशय अलग बात है, वो संशय अलग बात है, वो उसकी खोज करेगा। जब खोज करेगा तो ईश्वर उसकी खोज के लिए सारी सामग्री देगा, व्यवस्था करेगा। यदि उसके अंदर ईश्वर के प्रति श्रद्धा पूरी है, लगन पूरी है, तड़प पूरी है, तो सारी सामग्री ईश्वर पेश करेगा उसके लिए। वो अंतर्यामी है भाई, जो उसकी तरफ आना चाहता है दिल से, उसको मार्गदर्शन नहीं देगा वो। रामकृष्ण परमहंस कहा करते थे कि मेरी मां सबके हृदय की बात जानती है, किसको क्या चाहिए वो जानती है और समय पर देती है। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार अबोध बालक की मां, जो बोलना भी नहीं जानता, उसकी मां सब जानती है। इसको दाल रोटी हजम नहीं होगी, इसको दूध हजम होगा, वो दूध ही देती है। तो हम तो उस प्रभु की संतान है भाई। यदि हमारा प्रभु के प्रति समर्पण है, प्रभु के प्रति तड़प है, तो हमारी व्यवस्था नहीं करेगा क्या वो? ऐसा हो ही नहीं सकता। कमी हमारे अंदर है, संशय वृत्ति हमारे अंदर है, इसीलिए हम चालाक लोगों का संग पकड़ लेते हैं और गुरु की बात को की अवज्ञा करने लगते हैं। तो कुछ भी चतुराई हम धारण कर लें, कितने भी हम ग्रंथ पढ़ते रहें, कितने भी शास्त्र पढ़ते रहें, इस चतुर्बुद्धि को धारण करके कुछ कल्याण नहीं होने वाला। समर्पण बुद्धि चाहिए। देखिए ना, वर्तमान में महात्मा मंगत राम जी के रूप में सदगुरु आया और उसके द्वारा वाणी प्रकट हुई, उसके द्वारा संतविदास शास्त्र की रचना हुई, तो ये क्या इस संगत के लिए हुई क्या? गुरु को आगे संगत की क्या कीमत है? गुरु तो जगत गुरु होता है ना, वो सारे जगत के लिए, ईश्वर तो सारे जगत के लिए, तो एक संगत के लिए थोड़ा ना है वो। इसीलिए सरकार का भी नियम है, दुनिया का भी नियम है, सत्पुरुष की वाणी, सत्पुरुष के द्वारा रचित शास्त्र, वो किसी की संपत्ति नहीं हो सकती, कोई संगत भी उस पर होल्ड नहीं लगा सकती। बस लिमिट बांध दी कि 50 साल तक संगत चाहे तो उस पर कब्जा रख सकती है, 50 साल के बाद कोई भी उसको प्रिंट करा सकता है, वो जगत की संपत्ति है, किसी संगत की संपत्ति नहीं है। संसार यही है, देखें रूल तो यहां भी है, देखो किसी को कॉपीराइट नहीं है, कोई क्लेम नहीं कर सकता कि हमारा ग्रंथ है ये। तो इसीलिए वो जगत कल्याण के लिए शास्त्र प्रकट होते हैं, जगत कल्याण के लिए वाणी प्रकट होती है, जगत कल्याण के लिए वेद प्रकट हुए, जगत कल्याण के लिए उपनिषद प्रकट हुए, जगत कल्याण के लिए गीता प्रकट हुई। मनुष्य कैसे इस पे होल्ड कर सकता है? तो इसीलिए हमारा ये कैसा सौभाग्य इस घोर कलयुग में कि एक पूर्ण गुरु का हमको पता लगा, उसकी वाणी का पता लगा, उसके शास्त्र का पता लगा, फिर भी हम ऐसे अज्ञानी कि संसारी किताबें पढ़ने में मशगूल हैं, ان کو سیکھنے کی کوشش ہی نہیں کرتے، بڑی لاپرواہی سے پڑھ کے کہتے ہیں بڑی کٹھن ہے، سمجھ نہیں آتی، رکھ دی کونے میں، اور سوارتھی اتنے ہیں مجھے پتا لگ جائے کہ یہ پستک ہے اس کو تو یدی سمجھ لے گا تو تیری انکم 10,000 روپے مہینے بڑھ جائے گی، تو ٹیوٹر بھی لگا لوں گا، گرہستی سے نکال کے سمے بھی لگا دوں گا اور سمجھ کے ہی چھوڑوں گا، کیونکہ مجھے لالچ ہے کہ 10,000 روپے مہینے کی انکم بڑھ جائے گی۔ اور لیکن جس سے پوری زندگی تے میں تیری 4 چاند لگنے ہیں، زندگی کے سارے بندھن ختم ہو جانے ہیں، دکھ نام کی وستو تیرے جیون سے ایلیمینیٹ ہو جانی ہے، غائب ہو جانی ہے، ایسی پستک، ایسا گرنتھ، ایسا شاس، اس کو تو سمجھنے کی ضرورت ہی نہیں سمجھتا، کیسی تیری بدھی ہے؟ پھر کہتا ہے میں بڑا بدھیمان آدمی ہوں۔ یہ گھور سوارتھی بدھی کے لکشن ہیں، جگیاسو کے لکشن نہیں ہے یہ، وہ تو پوری جان لگا دے گا اس کو سیکھنے کے لیے۔ لوگوں کو سنسکرت نہیں آتی تھی، لوگوں نے شاستر پڑھنے کے لیے سنسکرت سیکھ لی، لوگوں کو انگلش نہیں آتی تھی، انگلش میں ان کو لٹریچر ملا جو اوریجنل، تو انہوں نے انگلش سیکھ لی۔ ورلڈ کے اسکالرس 8-8 لینگویج سیکھ لیتے ہیں جب انہوں نے کوئی ریسرچ کرنی ہوتی، ایک دو نہیں 8-8 لینگویج سیکھ لیتے ہیں، اور میری مدر ٹنگ میں اپلبدھ ہے، کہتا ہوں یہ کٹھن ہے۔ تو ہم کہاں کہاں غلطیاں کرتے ہیں، گھور غلطیاں، ایسی غلطیاں جو ہماری زندگی کو تباہ کر دیں گی۔ دیکھیے اجانتا میں اپنی غلطیوں پر ہم نظر ہی نہیں ڈالتے، بڑے گڑوان اپنے آپ کو سمجھنے لگتے ہیں، یہ ہماری استھتی ہوتی ہے۔ اس لیے گرو کی ایک ایک بات بڑی گہری ہوتی ہے، اس کو اسی گہرائی سے، اسی تنمیتا سے، اسی لگن سے سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اس لیے مہاراج نے سمتا ولاس میں لکھ دیا، نام کی پریبھاشا لکھ دی، اس نام کو انہوں نے بیج منتر کر کے لکھا۔ بیج منتر کون سا ہے؟ جو سدھ پرش سے پراپت ہوا ہوگے، یہ پریبھاشا ہے بیج منتر کی۔ کہاں لکھا ہوا ہے جو کہیں سے پراپت ہوا ہوگے؟ تو یہ لکھانا چاہیے پریبھاشا، یعنی غلط ہے یہ تو یہ لکھانا چاہیے بیج منتر کہیں سے پراپت ہوا ہوگے، یہ لکھا ہونا چاہیے۔ تو آج کل نام دان ایک فیشن بن گیا ہے، بڑے دنیا میں نام دان چل گئے ہیں، نکلی شش نکلی گرو ویاپار چل رہا۔ تو بات نام کی نہیں ہے، بات ست نام کی ہے، وہ نام جو ست روپ ہو، جو برہم روپ ہو، جو ایشور روپ ہو۔ ست اور تت، یہ دو اکشر یوز ہوتے ہیں برہم کے لیے، برہم کو ست بھی کہا جاتا ہے، برہم کو تت بھی کہا جاتا ہے۔ اس لیے مہامنتر کی مہیما میں بھی منتر کے پیچھے دو شبد کا استعمال کیا جاتا ہے، منگت تت اکشر نت گائیے پربھو درشن ہوئے سنیوگ۔ یہ اکشر برہم روپ ہیں، ست منتر سمرن کرے اٹھت بیٹھت نر جوئے، یہ منتر ست روپ ہے، کتنا اسپشٹ ہے۔ لیکن ہم شبدوں کی پریبھاشا ہی نہیں جانتے، شاستر پڑھے ہی نہیں، تو جو من چاہے کہتے رہتے ہیں۔ کتنی جگہ واڑی ایکسپلین کر رہی ہے اس بات کو کہ یہ منتر ایشور روپ ہے، اور گارنٹی دے رہی ہے وانی، کلہ کلیش سب دور ہوئے پائے گیان تت یوگ۔ یہ سارے کلہ کلیش کہاں ہوتے ہیں؟ من کے انترگت ہوتے ہیں، اور کلہ کلیش سب دور ہو جائیں گے، اس کا مطلب کیا ہوگا؟ من نرمل ہو جائے گا، اور مل کیا ہے؟ واسنا کو مل کہتے ہیں، اور نرمل کا مطلب واسنا رہت ہو جائے گا۔ تو جو من واسنا رہت ہوگا کیا اس کو ہم من کہیں گے؟ تو اسی لیے رامکرشن پرمہنس کہتے ہیں شدھ بدھی، شدھ من اور آتما ایک ہی چیز ہے۔ اس لیے مہاجی کہتے ہیں شدھ بدھی سے یا نرمل بدھی سے اس ایشور کا انوبھو ہوتا ہے۔ तो कौन सी निर्मल बुद्धि हुई? जिस बुद्धि में कर्तापन नहीं रहता वो निर्मल बुद्धि है, उससे ईश्वर का दर्शन होता है। इसका मतलब, यहां दर्शन का मतलब है जीव और ईश्वर एक हो जाता है। तो उसी को ये महामंत्र की महिमा वाणी एक्सप्लेन कर रही है, कलह कलेश सब दूर होए पाए ज्ञान तत्व। वो ज्ञान तत्व है, वो ज्ञान रूप है। वो तत्व कैसा है? वो ज्ञान रूप है। जैसे हम कहें सूर्य कैसा है? प्रकाश रूप है। तो अब बताइए कितनी गहरी बात है ये वाणी, किस गहराई का वर्णन कर रही है। और हम संगत के लोग क्या इसकी तेरा तीनी कर रहे हैं, क्या अर्थ का अनर्थ कर रहे हैं? ये पाप नहीं तो क्या है? ये घोर पाप है। ईश्वर क्या सजा देगा हमको नहीं मालूम, लेकिन जो ईश्वर के खेल में खलल डालता है, सजा तो उसकी निर्धारित होती होती है, कोई रोक नहीं सकता उसको। ये ईश्वर की लीला है, ईश्वर की रचना है, जीव कल्याण के लिए है। ये लीला जीव कल्याण की है, हम इसमें खलल डालें, अपने गलत निश्चय को इस पे थोप दे वाणी के ऊपर, कितना बड़ा पाप है, जरा विचार करके देखो। तो महामंत्र विश्व के सारे जीवों के लिए, चाहे वो किसी भी लैंग्वेज के ज्ञाता हो, उनके कल्याण के लिए प्रकट हुआ है। तो इसीलिए कोई बालक यदि मंत्र उच्चारण करने लगे तो तोतली आवाज में बोलेगा वो, इसलिए उसको मौन होकर जप करने की आज्ञा है, बोलने की आज्ञा नहीं है। गायन के लिए बोल सकते हैं आप, जप के लिए मौन होकर जप है, तो मौन होने में लैंग्वेज खत्म हो जाती है, इसलिए उस समय मंत्र वो ईश्वर रूप ही है। किसी भी लैंग्वेज का जानने वाला इस मंत्र को का सिमरन कर सकता है, इसमें लैंग्वेज का बंधन नहीं है। राग हम सीख ही आते हैं, हिंदुस्तानी अफ्रीकन राग गाते हैं, अफ्रीकन हिंदुस्तानी राग गाते हैं। तो मंत्र को जप करना तो कोई व्यक्ति सीख सकता है, और जो इसका जप करेगा उसके अंदर सतनाम प्रकट होगा। सतनाम भी लैंग्वेज का मोहताज नहीं, किसी देश की सीमा का मोहताज नहीं है, वो सबके लिए यूनिवर्सल है। नहीं तो ईसा मसीह क्यों कहते इन द बिगिनिंग वाज वर्ड, प्रारंभ में केवल ईश्वर था, वो तो सारे जीवों के लिए, जीवों की जान है वो, इसके बिना जीवन ही नहीं है जीव के अंदर, इस शरीर के अंदर। तो जो ईश्वर मेरी जान रूप है और मेरी देह के अंदर मौजूद है, उस ईश्वर को मैं एब्सेंट समझता हूं, कहीं और समझता हूं, कैसी अज्ञानता है। इसलिए बड़ा भाग्य है, अपार भाग्य है जिस जीव का पूर्ण गुरु पर विश्वास आ जाता है, क्योंकि अब उसके मोक्ष का रास्ता खुल गया। फिर वो गुरु की हर बात को, हर मार्गदर्शन को बारीकी से समझने की, जानने की कोशिश करेगा और उस पर अमल करने के लिए तप करेगा। तप का मतलब है संसार में कष्ट सहन करेगा। जब उस मार्ग पर चलने के लिए, कष्ट सहने के लिए तैयार होगा, तो अंतर्यामी गुरु उस पर अपनी कृपा करेगा कि मेरी कृपा का पात्र, क्योंकि मेरा ये लायक शिष्य है। तो गुरु उसको अपना लेता है, अंदर ले जाता है, तब इस मंत्र की कृपा से, मंत्र शक्ति से अंतर्यामी गुरु प्रकट होता है। उस अंतर्यामी गुरु का नाम ही नाद या कुंडलनी है। तो वो जहां पहले अनुभव होता है जीव को, उस स्थान का नाम है नाब कमल है अचरज था। इसके बाद इसकी ऊपर को गति चलती है, और जैसा वाणी में जगह जगह वर्णन आता है, महाराज जी ने योग वाणी में वर्णन किया है, वहां से इंडिकेशंस हम ले लेते हैं, ले सकते हैं। बाकी ये अनुभव की बातें हैं, ये भाषण देने की बातें नहीं है। तो ये अनुभव की बात है, जो आज्ञा मानकर, गुरु आज्ञा मानकर चलेगा, उसको अंदर सतनाम का अनुभव जरूर होगा और उसकी एक दिन मंजिल जरूर पूरी होगी, चाहे एक जन्म की जगह तीन जन्म क्यों ना लग जाए। लेकिन निराशा की बात नहीं है, जिस जो गुरु आज्ञा पालन करके चल रहा है उसका कल्याण जरूर होगा, इसलिए पूर्ण विश्वास रखना चाहिए और अपनी मंजिल तय करनी चाहिए। ओम धम सत्यम सर्वलाल।